श्रोताओं नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पत्रस की दूसरी पत्री का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका मुख्य विषय है पवित्रता, सत्य ज्ञान और पुनरागमन। हमें विश्वास है कि इस बाइबल अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है, तो आइए विस्तार पूर्वक आज के इस बाइबल अध्ययन को सुने। प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन। तो आइए श्रोताओं, आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, किंतु इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
जब जब मेरा मन घबराए, जब जब मेरा मन घबराए, प्रभु जी तेरी याद आए, प्रभु जी तेरी।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब परमेश्वर पिता की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का, जो इस समय परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए बैठे हैं, स्वागत करता हूँ, और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से दूसरा पत्रस की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि पिछले अध्ययन में हमने देखा कि पत्रस इस पत्री का लेखक है, जबकि बहुत सारे लोग उसके लेखक होने पर इनकार करते हैं, परंतु हमने जाना है कि उसका लेखक पत्रस ही है। तो इससे पहले कि आज हम सब अपने अध्ययन में और आगे बढ़ें, आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम दूर दराज में रहकर भी एक साथ आपके वचन का अध्ययन रेडियो के माध्यम से कर सकते हैं। इस समय हमारे जितने भी श्रोता भाई बहन आपके वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप उन्हें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि हर एक जब आपके वचन को सुने तो आपका वचन प्रत्येक के कानों से होकर हृदय तक पहुंचने पाए, उनके हृदय को छूने पाए, बातचीत करने पाए, उनके जीवन को बदलने पाए। पिताजी, हमारी प्रार्थना है कि आप उन्हें हर एक प्रकार की बुराइयों से, व्यर्थ की बातों से, दुनियावी चिंताओं से, शैतान के हर एक छल प्रपंच से बचाएं। हमारी विनती उन भाई बहनों के लिए है जो इस समय निराश हैं, परेशान और चिंताओं में है, किसी न किसी प्रकार की बीमारी में है। आप उन पर दया दृष्टि करें, उन्हें छुएं, चंगाई दे, शांति दे, और आज का वचन उनके जीवन के लिए एक मरहम का काम करने पाए। प्रभु, आप हम सबके साथ हो, हमारे सहायक हो। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, हम देखते हैं कि मसीही स्वभाव से विश्वास बढ़ता है। परमेश्वर में विश्वास न करना किसी की मानसिक समस्या नहीं है, यह पाप है जो मन फिराव में अवरोधक है। पाप आपके मन मस्तिष्क पर पर्दा डालता है। आपको बस विश्वास करना है, बाकी सब काम प्रभु यीशु स्वयं संभाल लेगा, क्योंकि उसमें विश्वास करने वाला नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा, हमेशा का जीवन। यह बहुमूल्य विश्वास है जो हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा हमें प्राप्त होता है। वह हमारे पाप ही नहीं धोता, वह हमें अपनी धार्मिकता भी दे देता है। क्या आप नहीं चाहेंगे कि आप उस धार्मिकता को प्राप्त करें? तो आइए अब हम आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे दूसरा पत्रस की पत्री 1:2। यहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। मेरे प्रियों ध्यान दीजिए, लिखा है अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। जी हाँ, अनुग्रह और शांति का सदा यही क्रम है। हमें पहले परमेश्वर के अनुग्रह का बोध हो। परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया है, जो हमारी योग्यता, हमारे सद्गुण या हमारी किसी महानता के कारण नहीं, परंतु प्रभु यीशु में हमारे विश्वास के कारण है, क्योंकि उसने हमसे ऐसा प्रेम किया कि हमारे लिए अपनी जान दे दी। जी हाँ, आज जब आप यीशु के क्रूस की ओर देखते हैं, वह क्रूस पर टंगा है या इसलिए नहीं कि उसने कुछ गलती की है या उसने कुछ पाप किया है, वह इसलिए टंगा है, इसलिए मरा है कि आपके पापों को, मेरे पापों को, जिसकी सजा मुझे और आपको मिलनी चाहिए, उसने अपने ऊपर में ले लिया। जी हाँ, हमारे पापों के लिए क्रूस पर मृत्यु की दंड सह ली। मेरे मित्रों, आपका यह उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह के कारण है। अपनी योग्यता के बिना आप केवल प्रभु यीशु में विश्वास करें तो वह आपका उद्धार करेगा। परमेश्वर के अनुग्रह का बोध हो जाने के बाद आपको शांति मिलती है, जो परमेश्वर की शांति है। इसीलिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:27 में, जहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, इसलिए तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। जी हाँ, यह शांति परमेश्वर की शांति है, जो हमारे समझ से परे है, जो हमें संसार नहीं दे सकती है। पौलुस रोम की कलीसिया को यही लिखता है, रोमियो के पत्र 5:1 में, जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। मेरे प्रियो, मैं फिर कहता हूं कि हम शमौन पत्रस को एक अज्ञानी मछुआ ना समझें। हम उसकी पहली पत्री में देखते हैं कि वह अन्य किसी भी सुसमाचार लेखक से अधिक संक्षेप में अधिक शिक्षा दे देता है। वह सब विवादित विषयों को लेकर बड़ी ही दक्षता से, निपुणता से हमें समझाता है। वह एक ऐसा लेखक है जो गणित भी समझाता है। अनुग्रह और शांति बहुतायत से बढ़ती जाए, यह गणित है। पौलुस ने गणित का उपयोग नहीं किया है। वह कहता है कि परमेश्वर अनुग्रह का धनी है और परमेश्वर की शांति सारी समझ से परे अर्थात बाहर है। पत्रस व्यवहारिकता प्रकट करते हुए कहता है, अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। यह कैसी अद्भुत बात है। मेरे प्रियो, वह यही समाप्त नहीं करता है। अनुग्रह और शांति कैसे बढ़ेगी? किसी दर्शन के द्वारा? जी नहीं, परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा। अब यह शब्द पहचान अर्थात ज्ञान फिर से आता है। इस पत्री में हम इस शब्द को बार बार देखेंगे, क्योंकि यह अत्यधिक महत्वपूर्ण शब्द है। पौलुस भी इस पर विशेष ध्यान देता है। फिलिपियों की पत्री, जिसमें हम पढ़ते हैं कि फिलिपी की कलीसिया को वह लिखता है 3:10 में, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। ओह, उसे जानना। जी हाँ, मसीही विश्वास एक व्यक्ति है। हमें उसमें विश्वास ही नहीं करना है, उसे जानना भी है। वह एक जीवित उद्धार करता है जो इस पल परमेश्वर की दाहिनी ओर उपस्थित है। दानियल नबी की पुस्तक 11:32 में लिखा है, जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हिया बांधकर बड़े काम करेंगे। मेरे मित्रों, आप जब तक प्रभु यीशु को नहीं जानेंगे तब तक परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यह पहचान आपको कैसे प्राप्त होगी? पत्रस आपको दुविधा में नहीं रहने देता है। अपनी पत्री को पूरा करते करते वह आपको बता देगा कि प्रभु यीशु की पहचान परमेश्वर के वचन से प्राप्त होती है। परमेश्वर का सत्य वचन, पवित्र वचन, परमेश्वर के ज्ञान के संबंध में मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं ताकि आप इस बात को समझ सकें। पत्रस क्या कहता है? आपसे कोई पूछे, क्या आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जानते हैं? मैं कहूंगा, नहीं, मैंने उनके बारे में सीखा है। यदि आज वह आपके सामने आ जाए तो क्या आप उसे पहचान लेंगे? जी हां, मैं उन्हें पहचान तो लूंगा, परंतु मैं यह नहीं कह सकता कि मैं उन्हें भली भांति जानता हूं। उनकी पत्नी और उनके निकट संबंधी उन्हें भली भांति जानते हैं और पहचानते भी होंगे। पत्रस कहता है, हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। तो पहचान के लिए जो यूनानी शब्द का काम में लिया गया है, उसका अर्थ है ऊपरी ज्ञान, जो पवित्र आत्मा मसीह की बातों को लेकर हम में सत्य बनाता है। मेरे मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप प्रभु यीशु को अपने घनिष्ठ मित्र से भी अधिक गहराई से जानते हैं। उससे वह भी कहें जो कहने का साहस आपने कभी नहीं किया है, आपके घनिष्ठ मित्र भी नहीं कर पाते हैं। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि उसे जानना अनंत जीवन है। मेरे प्रियो, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि उसके बारे में जानना और उसे जानना, इसमें अंतर है। उसे जानने के लिए पहले हमें नया जन्म लेना होगा। पहला पत्रस एक अध्याय उसके 23 पद में वह कहता है, तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय में हम निकोदिमुस के बारे में पढ़ते हैं, जहां पर बताया गया है कि प्रभु यीशु उससे कहते हैं कि जब तक मनुष्य नए सिरे से न जन्मे वह परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। और पत्रस यहां पर हमें बताता है कि प्रभु यीशु को जानने के लिए हमें नया जन्म का लेना अवश्य है। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आएंगे तो आपका नया जन्म होगा, आपका जीवन बदल जाएगा। और यही कारण है कि पौलुस भी कुरिन्थियों की पत्री में कहता है कि यदि कोई मसीह में है तो वह एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई है। जी हाँ, जब यीशु आपके जीवन में आता है, आपका नया जन्म होता है, आपके स्वभाव में, आचरण में और जीवन में परिवर्तन आता है। आप बुराइयों को छोड़ करके अच्छाइयों की ओर बढ़ते हैं और यही नया जन्म है। मैंने एक प्रचारक को सुना कि उद्धार पाने के बाद वह बाइबल कॉलेज में पढ़ने के लिए गए कि पता लगाएं कि उन्हें क्या हुआ है। यह अच्छा है और इससे प्रकट भी होता है कि आप उसमें विश्वास कर सकते हैं, परंतु उसके वचन का ज्ञान फिर भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं जब तक कि आप व्यक्तिगत रीति से प्रभु यीशु की निकटता में उसके वचन का अध्ययन नहीं करते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे दूसरा पत्रस की पत्री 1 अध्याय उसके 3 पद। यहां पर लिखा है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। लिखा है, उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने हमें परिपूर्ण जीवन जीने के लिए सब कुछ दिया है। मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, परंतु मैं तो जीना चाहता हूं। मेरे कहने का अर्थ यह नहीं कि मैं पूरे शहर को लाल कर दूं, परंतु उसके ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया गया है। अब आप यह नहीं कह सकते कि परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए या जीवन में प्रबंध नहीं किया कि उसके लिए जिएं। उसने मसीह में हमारे जीवन के लिए और उसके लिए हमारी जीवन भक्ति के लिए परिपूर्ण प्रबंध कर दिया है। लिखा है, उसी की पहचान के द्वारा दिया है जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। मेरे प्रियो, यहां फिर पहचान शब्द आया है। केवल मसीह की पहचान के द्वारा ही आप यहां जीवन जीना सीख सकते हैं और अधिक ईश्वरात्मक मनुष्य में विकसित हो सकते हैं। इस संसार में आप पूर्ण विकसित व्यक्तित्व के स्वामी तब ही हो सकते हैं जब आप मसीह को पहचान लें, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। उसकी पहचान है, इसका अर्थ है प्रभु ईश्वर के स्वरूप में होना। जैसा कि हमने पहले देखा है कि नया जन्म पाना, उसके बाद उसकी संगति में, उसके स्वरूप में बढ़ते जाना। यहां पर पत्रस कहता है सद्गुण। सद्गुण, आज हम सद्गुण को नैतिकता के आधार पर शुद्ध मानते हैं, परंतु पत्रस का अर्थ है उत्तमता और साहस। इसका अर्थ है जीवन में अच्छाइयां छूने का साहस। आपको हर बात में हां कहने वाला भीरु मनुष्य नहीं बनना है। आपको अपने पांव पर खड़े होकर अपने पद का अधिकार दिखाना है और परमेश्वर के लिए गिने जाना है। हम में आज ऐसा सद्गुण होना आवश्यक है और इसे प्राप्त करने का एक ही मार्ग है, मसीह की पहचान। यह सूत्र पत्रस हमें दे रहा है, कहता है उसी की पहचान के द्वारा जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। जी हां, आज आपकी पहचान किस में है, मसीह में या किसी और में? पत्रस आगे कहता है, दूसरा पत्रस की पत्री 1 अध्याय उसके 4 पद में, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं कि शमौन पत्रस प्रतिज्ञाओं को बहुमूल्य क्यों कहता है। पहले पद में वह हमारे विश्वास को बहुमूल्य कहता है। हमें नए नियम में कुछ अत्यधिक बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं दी गई हैं, जिन्हें पत्रस बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं कहता है। जैसे यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 37 पद में प्रभु यीशु की प्रतिज्ञा है कि जो कोई उसके पास आएगा उसे वह कभी नहीं निकालेगा। और मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 28 पद में उसने प्रतिज्ञा की है कि सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों को वह विश्राम देगा यदि वे उसके पास आएं। और तब हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय के 29 पद में वह कहता है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। यह आपके मन और जीवन को प्रभु यीशु के अधीन करने का विश्राम है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 6 पद में वह कहता है, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। उसकी एक और प्रतिज्ञा है जो अनंत जीवन से संबंधित है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। और तब हम देखते हैं पहला पत्रस 1 अध्याय उसके 23 पद में लिखा है, तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। मेरे प्रियो, ये सब अद्भुत प्रतिज्ञाएं प्रभु यीशु की पहचान और उसमें विश्वास के द्वारा प्राप्त होती है। तब हम आगे देखते हैं, ताकि इनके द्वारा तुम ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ, अर्थात आप परमेश्वर की संतान बन जाएं। यह कैसा महान सत्य है मेरे प्रियो, यह दिल दहला कर रख देने वाली बात है। नया जन्म पाने पर आपको परमेश्वर का स्वभाव प्राप्त होता है। मेरे मित्रों, आप किसी से धोखा ना खाएं कि मसीही जीवन करो और मत करो का चक्र है। मित्रों, आप परमेश्वर के स्वभाव के सहभागी हैं और आपको परमेश्वर की बातों की आवश्यकता है। इसलिए यहां पर पत्रस कहता है, तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है। जी हाँ, यह एक बहुत बड़ी बात है। आगे चलकर पत्रस ढोंगियों के विषय में कहेगा जो संसार की बुराई से बचे हैं। संसार की बुराइयों से बचना और सड़ाहट से बचने में कैसा महान अंतर है। संसार की सड़ाहट हमारे भीतर है और बुराई बाहर है। आज यह माना जाता है कि यदि हम प्रदूषण को दूर कर पाए तो मनुष्य अच्छा हो जाएगा, परंतु सच तो यह है कि बाहरी स्वच्छता पुराने स्वभाव पर कुछ भी प्रभाव नहीं डालेगी। बाहर आप कुछ भी कर लें, आप भ्रष्ट ही रहेंगे। आप कुछ लोगों को देखते हैं कि वे सोमवार से रविवार को बदल जाते हैं। वे सोमवार को रविवार जैसे नहीं दिखते हैं। क्यों? क्योंकि रविवार को उन्होंने केवल प्रदूषण दूर किया है। यदि आपको सड़ाहट से बचना है तो आपको नए स्वभाव की आवश्यकता है। आपको ईश्वरीय स्वभाव की आवश्यकता है। आपको उसमें भागी होने की आवश्यकता है। आपको संसार की अभिलाषाओं की सड़ाहट से बचना है। जी हाँ, तब जाकर के आपके जीवन में शांति और आनंद कायम होगा। तथापि नया जन्म पाकर आप में परमेश्वर का स्वभाव आ गया है तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपका पुराना स्वभाव तुरंत समाप्त हो गया है। विश्वासी के जीवन में नए और पुराने स्वभाव के मध्य लगातार संघर्ष होता रहता है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण प्रभु यीशु ने उड़ाव पुत्र के दृष्टांत के द्वारा हमें दिया है। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 11 से 32 पद में, अपने पुराने स्वभाव के कारण वह जवान घर छोड़कर चला गया। वहां उसने अपना सारा धन दौलत भोग विलास में उड़ा दिया और सुअरों के साथ रहने लगा, परंतु उसमें अपने पिता का स्वभाव था और उसका पिता सुअरों के साथ नहीं रहता था। वह एक बड़े घर में रहता था। उसका पिता ईश्वर भक्ति और शुद्धता का पालन करता था। उसके तख्त पर, टेबल पर अच्छा भोजन होता था। यदि वह जवान नहीं कहता कि वह अपने पिता के पास लौट जाएगा, जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 18 पद में, तो वह उस धनवान मनुष्य का पुत्र नहीं था। एक भी सुअर ने ऐसा नहीं सोचा और न ही कोई सुअर उसके साथ उसके घर आया। कहा जाता है कि सुअर एक स्वच्छ पशु है, वह शायद एक अलग प्रजाति होगी। दूसरा पत्रस 2 अध्याय उसके 22 पद में लिखा है कि सुअर को नहलाया जा सकता है, वह साफ सुथरा हो जाता है, वह कलीसिया का सदस्य भी बन सकता है, सेवक और प्राचीन भी बन सकता है, प्रचारक भी बन सकता है, परंतु वह सुअर ही है और कीचड़ में ही लौटेगा। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि पुत्र में अपने पिता का स्वभाव है और वह अंततः अपने पिता के घर ही लौट आएगा। हम परमेश्वर की संतान हैं, हम में परमेश्वर का स्वभाव है। यह एक महान बात है। हम परमेश्वर के वचन से उसकी वाणी सुन सकते हैं और पवित्र आत्मा उन बातों को हमारे लिए सत्य बनाता है। मेरे प्रियो, पत्रस यही नहीं रुकता है, वह आगे कहता है, इसी कारण मेरा मन करता है कि पत्रस से पूछूं कि किस कारण आप प्रभु यीशु की प्रतिज्ञाओं में और क्या जोड़ सकते हैं, हमारे ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी होने में और क्या जोड़ सकते हैं। मेरे विचार में तो पत्रस कहेगा, यदि आप यहां तक पहुंच गए हैं तो यह केवल आरंभ है, उद्धार के आगे अभी बहुत कुछ बाकी है। मेरे प्रियो, आपको यह सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा, पौलुस तीमुथियुस से भी कहता है, दूसरा तीमुथियुस की पत्री 3:15 में, पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। तीमुथियुस तो उद्धार पा चुका था, तो फिर पौलुस के कहने का अर्थ क्या है? उद्धार के 3 काल हैं। ध्यान दीजिए, मैंने उद्धार पा लिया है भूतकाल, मेरा उद्धार हो रहा है वर्तमान काल, मेरा उद्धार होगा भविष्यकाल। यूहन्ना लिखता है 1 यूहन्ना 3:2, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे, इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। मेरे प्रियो, मैं अभी तक प्रभु यीशु के स्वरूप में नहीं हूं, मैं उस प्रक्रिया में हूं। अब पत्रस हमसे मसीही परिपक्वता के बारे में कहेगा, नया जन्म पाने के बाद विश्वासी को शिशु अवस्था में ही नहीं रहना है, उससे बढ़ना है, अर्थात परमेश्वर के वचन को और अधिक खाना है, उसमें से सीखना है, ताकि परमेश्वर के स्वभाव में धीरे धीरे बढ़ता चला जाए, सिर्फ बालक ही बना न रहे। मेरे प्रियो, आज हमारे लिए भी यह अति आवश्यक है कि जब हमने मसीह को पा लिया है, उस पर विश्वास कर लिया है, उद्धार का आनंद ले लिया है, तो मुझे और आपको उसमें प्रतिदिन बढ़ते जाना है, ना कि चुपचाप किसी कोने में बैठ जाना है। आज यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आप सबके साथ हो और आपकी सहायता करें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
डर कितना प्रभु इधर उधर, चाहे कितने खुशी तेरी।